Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और यदि पूर्व जन्म में पूरी तैयारी नहीं है, फिर भी बहुत तैयारी है, तो एक ही बार श्रवण मात्र से भी हो जाएगा. और पहले की कोई तैयारी नहीं है, तो इस समय की पूरी तैयारी होनी चाहिए, तभी जाकर होगा. तब श्रुति ने यह कहा कि ऐसे तैयार हुए हुए व्यक्तियों के सामने यदि कोई व्यक्ति मैंने इतनी तैयारी की, ये तैयारी का अभिनिवेश रखता है, अभिमान रखता है, तो उसके सामने वो परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करता, अन्यथा वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है. एमे वेशा विवृणुते तेन लभ्य तस्यै स आत्मा विवृणुते तनुसम. वो जिसको ये समझता है कि ये अब पूरा तैयार है, मेरे स्वरूप को अपरोक्ष अनुभव कर सकता है और इस पर इसको कोई प्रतिबंधक नहीं है, ये उसको पूरा विश्वास हो जाएगा, तो वह अपने स्वरूप उसके सामने प्रकट कर देगा, उस स्वरूप लक्षण के रूप में प्रकट कर देगा. ऐसी भी श्रुति है. इसका मतलब क्या हुआ? वो तटस्थ लक्षण वाला परमात्मा जब किसी पर अनुग्रह करेगा, तब वह अपने स्वरूप लक्षण प्रकट करेगा. अन्यथा वो स्वरूप लक्षण को वो परमात्मा अपने ही तटस्थ लक्षण के अंदर छुपाए रखेगा. अब आप तो समझ चुके होंगे तटस्थ लक्षण का मतलब क्या है, स्वरूप लक्षण का क्या है. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद अद्वितीयता, ये उसका स्वरूप लक्षण है. और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सृष्टि स्थिति संहार आदि करने की क्षमता उसका तटस्थ लक्षण है. इस करने की क्षमता वाले के अंदर वह स्वरूप लक्षण छुपा हुआ है, तो हमको परमात्मा उस कर्ता के रूप में अनुभव होगा. लेकिन कर्ता के रूप में अनुभव होने पर भी अकर्ता के रूप में जो परमात्मा है वह कर्ता के अंदर छुपा हुआ होने के कारण अकर्ता के रूप में हमको अनुभव नहीं होता. जैसे आप हमको जब भी जानते हो तो बढ़िया वेदांत के प्रवचन कर्ता के रूप में जानते हो, यह हमारा क्या है, यही तटस्थ लक्षण है ना. आप आत्मानंद गिरी को किस रूप में जानते हो, ये जानते हो कि प्रेमपुरी में आते हैं मई में, जून महीने में, और वेदांत बढ़िया दृष्टांत देकर बड़े सरल ढंग से बढ़िया सुनाते हैं, ऐसे प्रवचन करते हैं, इस रूप में आप हमको जानते हो. इस रूप में यदि आप हमको जानते हो तो हमारे स्वरूप को नहीं जानते हो, आप हमारे तटस्थ को जानते हो. इस प्रवचन कर्ता के अंदर प्रवचन अकर्ता के रूप में मैं जो विद्यमान हूं उसको तुम नहीं जानते हो. इसी तरह हम आपको कहेंगे कि आप नियमित वेदांत श्रोता हैं, प्रेमप्रिय आश्रम के रेगुलर बहुत निष्ठावान वेदांत श्रवण करता है, उस रूप में हम जानते हैं. इसका मतलब है उस आपको तटस्थ लक्षण के रूप में हम जानते हैं, आपके स्वरूप के रूप में हम आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि इस वेदांत श्रवणकर्ता के अंदर कुछ भी श्रवण करने की क्षमता नहीं वाला अश्रोता के रूप में जो बैठा हुआ है वह स्वरूप लक्षण है आपका, अश्रोता के रूप में. और इस वक्ता के रूप में बैठा हुआ, इसके अंदर जो अवक्ता के रूप में बैठा है वह स्वरूप लक्षण है, और वक्ता के रूप में जो है वह तटस्थ लक्षण है. श्रोता के रूप में आप यहां बैठे हैं तो वह आपका तटस्थ लक्षण है, और इस तटस्थ लक्षण यानी श्रोता के अंदर अश्रोता के रूप में जो आप हैं, दृष्टा के रूप में अदृष्टा के रूप में आप हैं, तो वह आपका स्वरूप लक्षण है. वह स्वरूप लक्षण तो आपकी ही कृपा से हमको अनुभव होगा और हमारी कृपा से आपको अनुभव होगा, दोनों की कृपा से एक ही अनुभव होगा. ये नहीं समझना कि आपकी कृपा से हमको अपने से अलग अनुभव होगा या हमारी कृपा से आपको अपने से अलग अनुभव होगा. गुरु शिष्य की कृपा होगी तो दोनों एक अनुभव होगा. श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक जगह लिखा है, कोई एक जन्म एक व्यक्ति गया महाराज जी के पास उसने कहा कि महाराज परमात्मा कैसा है आप बताइए, आप परमात्मा है कहते हैं तो आप बताइए कि परमात्मा कैसा है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे जैसा है बेटा, और कैसा है कहेंगे बोलो। बोले कि बेटा परमात्मा तुम्हारे जैसा है। बोले मैं कैसा हूं? बोले तुम परमात्मा जैसे हो। मैं परमात्मा जैसा और परमात्मा मेरे जैसा, ये क्या मतलब हो गया? बोले यही तो रहस्य है, हैं? परमात्मा और तुम दोनों एक सा हो। फिर हम दोनों मिलाकर कैसे हैं? तो बोले तुम दोनों मिलाकर एक से हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा परमात्मा, परमात्मा जैसा तुम दोनों कैसे हो? तो बोले एक सा हो। एक कैसा होता है बोलो? एक कैसा होता है? वैसे ही है तुम दोनों, हाँ, क्योंकि तुम्हारे में और परमात्मा में द्वैत होता तब ये कहा जाता कि तुम भिन्न हो, तुम भिन्न हो, तुम दोनों मिलकर कैसे हो? तो बोले एक जैसा है, अभेद है, सजातीय विजातीय सुगत भेद रहिता है। ये तीनों भेदों से रहित वस्तु जैसा होता है वैसे तुम और परमात्मा हो, और क्या है? अब उसको ये तो परोक्ष हुआ वाक्य ज्ञान से। वाक्य ज्ञान से हमेशा परोक्ष ज्ञान होता है, वाक्य से श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता है, मनन और निधिध्यासन से वह अपरोक्ष होता है। सैव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः। गूढ़ शब्द का अर्थ कई जगह आया है, गीता में भी बार बार आया है, कठोपनिषद में आया है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तोग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये कठश्रुति है। ये नचिकेता जिस आत्मा को तुम जानना चाह रहे हो वो आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढः, सभी भूतों में वह छुपा हुआ है, छुप कर रह रहा है। जैसे किसी भी सामान्य व्यक्ति को वह कपड़ा पहनकर चल रहा हो और उसको सामान्य व्यक्ति को आपको कहो कि अरे भाई तुम्हारे पास 3 मीटर धागा है, तो कहेगा नहीं है महाराज, 1000 मीटर धागा वो अपने शरीर में लपेट रहा है, है? आप बताओ, आप जो साड़ी पहन रहे हो इस सारे धागों को साड़ी से अलग करके नापा जाए तो मुझे लगता है 1000 मीटर से भी ज्यादा होगा। भाई होगा कि नहीं होगा बोलो? और इतने 1000 मीटर से भी ज्यादा धागों को अपने शरीर में लपेट कर घूम रहा है और उससे कहो कि 1 मीटर धागा है तुम्हारे पास, तो वो कहता है नहीं है। वो धागा कहां छुपा हुआ है भाई? सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा, हर कपड़े में धागा छुपा हुआ है, दिखता नहीं है। दिखेगा कब? तो कोई दिखाने वाला युक्ति से दिखा देगा, युक्ति से दिखा देगा, तब वो युक्ति से दिखेगा। अब आपको निश्चित हो गया कि मेरे पास 1000 मीटर धागा है, ये पक्का हो गया। आपको ये भी निश्चय हुआ कि मेरे पास 1.5 किलो रू है, कपास है, ये भी निश्चय हो गया। लेकिन किसी से कहा जाए कि तुम्हारे पास कितनी कपास है, 1 किलो कपास है कि नहीं, तो 5 किलो कपड़े उस शरीर में लाद कर चल रहा है और उससे कहो कि 1 किलो कपास है कि नहीं, तो कहते कपास तो नहीं है महाराज, बोलता है, और कपास नहीं है तो कपड़े कहां से आ गए? लेकिन ये देखने की दृष्टि, यही तो हो गूढ़, यही है छुपा हुआ। परमात्मा छुपा हुआ किस रूप में? तो हर कार्य में वह छुपा हुआ है। कठोपनिषद में भी कहा है ये महाराज ने, ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, नहीं दिखने वाला है, क्योंकि छुपा हुआ कैसे दिखेगा? लेकिन दिखेगा कब? दृश्यते तोग्रे या बुद्धि या सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी, जिसने मनन और निधिध्यासन के द्वारा अपने बुद्धि को परिमार्जित किया है। परिमार्जित का अर्थ होता है सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ होता है अखंडाकार वृत्ति। ये वेदांत की प्रक्रिया आपको सुना रहे हैं भाई। सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ हो गया क्या? अखंडाकार वृत्ति, क्योंकि अखंडाकार वृत्ति का मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, अखंड जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो वृत्ति उसके तमाम आवरणों को नष्ट कर देती है और वृत्ति के द्वारा आवरण को नष्ट किया जाने पर वह तत्व जिसको तुम जानना चाह रहे हो वह अनावृत्त होगा। जब वह अनावृत्त होगा तो तुम्हें स्वयं ही वह अपरोक्ष होगा। इसलिए जरूरत है सूक्ष्म दृष्टि की। परमात्मा सर्वत्र नहीं है इसलिए सर्वत्र नहीं मिल रहा, यह बात नहीं है। परमात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवः, मुंडक उपनिषद में कहा है, कठोपनिषद में भी कहा, ये मनश्रुति आती है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। वह तो ओतप्रोत है, जरूरत है केवल उसको देखने की, पहचानने की, दृष्टि की आवश्यकता है। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च, जिसमें ब्रह्मर्षय अव देवताश्च ये सब के सब उसी में युक्त हैं, संयुक्त हैं, उससे वियुक्त नहीं है। ब्रह्मर्षय शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मर्षि। सामान्यतः ब्रह्मर्षि कितने हैं भाई? यूं तो वशिष्ठ जी को ब्रह्मर्षि ही कहा जाता है, और ये वशिष्ठ केवल वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि नहीं कहा गया है, ब्रह्मर्षय बहुवचन है, इसलिए सनत कुमारों को भी ब्रह्मर्षय कहते हैं। जो निवृत्त मार्गी हैं ब्रह्मर्षि, सनत कुमार आदि, वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि, हालांकि बाद में जाकर विश्वामित्र को भी ब्रह्मर्षि कह दिया गया है क्योंकि उस योग्यता को वो प्राप्त हो गए हैं। हाँ, वशिष्ठ जी के उनके बीच में यही झगड़ा घमासान चलता रहा। वशिष्ठ जी जन्म से ब्राह्मण थे, इसलिए जन्म से ब्राह्मण होते हुए ऋषि तुल्य हो गए, इसलिए उनका नाम ब्रह्मर्षि कह दिया गया। और विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन साधना के द्वारा ऋषि तुल्य हो गए, तो साधना के द्वारा ऋषि हो गए तो उनको राजर्षि कहना चाहिए। जब राज क्षत्रिय के पुत्र ऋषि हो गया तो राजर्षि, ब्राह्मण का पुत्र ऋषि हो गया तो ब्रह्मर्षि। तो वो कहते हैं कि जब मैं साधना के द्वारा ऋषि हो गया तो मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहा जाता है? केवल जन्म के आधार पर मुझे राजर्षि कहते हो, कर्म के आधार पर कर्म को क्यों महत्व नहीं देते हो? मुझे ब्रह्मर्षि कहना चाहिए। उनकी आकांक्षा भी यही थी, तुम तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि हुए हो तो हम भी तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि हो जाएंगे, और ब्रह्मर्षि होने के नाते कामधेनु गाय मिलती है तो हम भी ब्रह्मर्षि होंगे और कामधेनु गाय का अधिकारी बनेंगे। झगड़ा तो वहां से शुरू हुआ है ना, कामधेनु गाय के। देखो, संसार में जब भी झगड़ा होता है वह निष्काम में झगड़ा नहीं होता है, कामना में ही झगड़ा होता है। एक की कोई और कामना है, दूसरे की दूसरी कामना है, तीसरे की तीसरी कामना है, वस्तु एक है और दो आदमी उसमें कामना करेगा तो क्या झगड़ा नहीं होंगे क्या? है? विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में झगड़ा का कारण क्या बना, बीज क्या बना? कामधेनु गाय, क्योंकि वह निष्कामधेनु नहीं है, कामधेनु है। कामधेनु का मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति कराने वाली गाय, निवृत्ति कराने वाली नहीं है। निष्काम धेनु का मतलब क्या हुआ? निवृत्ति कराने वाली गाय। हाँ, आपको स्पष्ट बता दें भाई, आपको भ्रांति हो सकती है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी, जिस कामधेनु गाय के माध्यम से वशिष्ठ के आश्रम में ब्रह्मचारी लोग, सारे ऋषि लोग उस कामधेनु गाय के आधार पर बड़े बड़े यज्ञ देव कार्य आदि किया करते थे और सारे भौतिक साधन उपलब्ध कराने की क्षमता वाली थी, क्योंकि कामना भौतिक वस्तु की ही होती है सभी की, इसलिए वह कामधेनु है। अब निष्कामधेनु क्या है भाई? आपने सुना है कभी निष्कामधेनु गाय? अब आपको बता दिया जाए ये रहस्य, तो गुरु संत लोग कभी कृपा करते हैं तब बता देते हैं। निष्कामधेनु क्या है? गीता निष्कामधेनु है, उपनिषद निष्कामधेनु है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम ये सब अत्विष्ट काम दुख। ये गीता देख लो, गीता में ये बताए हे अर्जुन, यही तुम्हारे लिए कामधेनु है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ और मनुष्य एक साथ उसकी सृष्टि रचना करके सृष्टिकर्ता उस परमात्मा ने उस जीव को कहा कि हे जीवात्मा, ये तुम्हारे साथ साथ उत्पन्न हुआ हुआ ये जो यज्ञ है यह तुम्हारे लिए कामधेनु है, इसके द्वारा तुम सब अपना उन्नति कर सकते हो, अपना विकास कर सकते हो, और इसके द्वारा तुम अपना विनाश भी कर सकते हो। कामधेनु गाय दोनों काम करती है, विकास भी कर सकती है विनाश भी कर सकती है, कल्पवृक्ष विकास भी कर सकता है विनाश भी कर सकता है, चिंतामणि विकास भी कर सकता है विनाश भी कर सकता है, क्योंकि चिंतामणि कहो कल्पवृक्ष कहो कामधेनु ये सब कामधेनु के कोटि के हैं, तुम्हारे द्वारा काम्य पदार्थों को प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए सभी कामधेनु हैं, और ये आपके विकास भी कर सकते हैं विनाश भी कर सकते हैं। आप कहोगे नहीं महाराज कामधेनु गाय विकास कर तो कर सकते, विनाश कैसे कर सकती है, कल्पवृक्ष विकास तो कर सकता है विनाश कैसे कर सकता है। तो आपको मैं एक दृष्टांत दूं, कोई एक व्यक्ति था तीर्थयात्री, कहीं घूमता जा रहा था जंगल के रास्ते, थक चुका था, चलते चलते थक गया था, गर्मी थी, और उसने मन में विचार किया कि कहीं छांव मिल जाए, पेड़ की छांव मिल जाए तो वहां बैठे थोड़ा विश्राम कर ले। अब उसको पता नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है, उसने तो और उस साहब के वृक्ष की तरह वो भी खड़ा था, वो जंगल में एक कल्प वृक्ष और वृक्ष की तरह ही वो भी खड़ा था, उस वृक्ष के नीचे वो बैठ गया, उसको पता नहीं कि यह कल्प वृक्ष है। तो मन में सोचने लगा कि हा गर्मी बहुत है, थोड़ा ठंडा हवा चलना चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत है, थोड़े से हवा चल जाता तो अच्छा था, संकल्प किया तो हवा चलने लग गया, क्योंकि वह कल्प वृक्ष था, उस हवा की कामना की तो हवा पवन चलने लग गया, तो शीतल शीतल पवन चलने लगा, थका हुआ था बड़ा आनंद आ गया। तो मन में विचार करने लगा कि एक डेढ़ घंटा मैं यहां सो जाता हूं, विश्राम करता हूं, थकान दूर हो जाएगी, तो नींद भी गहरी आ गई तो सो गया, थकान भी दूर हो गई। बाद में जब वो जगा तो भूख लगी है, कहीं भोजन मिल जाता तो अच्छा था, इतना उसने संकल्प किया तो भोजन भी आ गया, वहां चारों थाल बढ़िया बढ़िया भोजन है, थाल में अब उसने संकल्प किया भोजन आ गया तो चुपचाप खा लेना चाहिए था। उसने मन में विचार किया ये क्या हो रहा है, मैं जो संकल्प कर रहा हूं ये सब हो रहा है, पवन के संकल्प किया पवन हो गया, निद्रा सब हो गई, पानी मिल गया, यहां तक तो सब ठीक था, ये भोजन का संकल्प करते ही बढ़िया थाली में भोजन आ जाना, ये क्या बात है, कहीं यहां आसपास में भूत तो नहीं है, वो संकल्प किया तो भूत सब खड़े हो गए, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था वो। वो मूर्ख है कि अरे तो भोजन क्या भूत ही देंगे, देवता भी तो दे सकते हैं कि नहीं, उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि कहीं आसपास में देवता लोग तो नहीं है, इस तरह मैं जो संकल्प कर रहा हूं वो सब पूरा होने वाला, पूरा करने वाले ये भोजन कोई देवताओं ने तो नहीं भेजा, यदि देवताओं का स्मरण करता तो देवता भी उसका चारों तरफ देवता देखता वो, लेकिन उसके अंदर जो वासना थी उसी का संस्कार वही स्मरण किया उसने, कहीं चारों तरफ भूत तो नहीं है यहां कहीं, तो इतना संकल्प करता था कि भूत दिखाई पड़ा था, अरे बाबा ये तो भूत ही है, तो भूत ही हो गया और नजदीक आ गया, अब ये मुझे खा डालेगा मुझे मार डालेगा, तो वो मार दिया। तो बोलो अब कल्प वृक्ष ने उसका विनाश किया कि नहीं है? उसके विनाश का कारण कौन हुआ, उसके मृत्यु का कारण कौन हुआ, खुद हुआ कल्प वृक्ष। यदि किसी और सामान्य वृक्ष के नीचे खड़े होकर वह इस प्रकार का संकल्प करता तो क्या वो विनाश भाव को प्राप्त होता, विनाश तो क्या है कि उसको पानी भी न मिलती, हवा भी न मिलता, लेकिन उसका जीवन तो रह जाता, मरता नहीं। इस तरह संकल्प कर दिया। देवताओं का कोई ऋषि मुनि यहां होंगे तो ऋषि मुनि आते सत्संग हो जाता। वहां मूर्ख था कि भूत प्रेत ही उसको याद आ गई उस समय है। विनाश भी होता है और विकास भी होता है। जैसे कि वशिष्ठ जी ने विकास किया, वशिष्ठ जी ने विकास किया, जैसे कि विश्वामित्र ने विनाश किया। अब आपको रहस्य बता दें, विश्वामित्र जब वशिष्ठ आश्रम पहुंच गए, वशिष्ठ जी ने कहा अपने ब्रह्मचारियों को, बटुकों को, गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों को कि अरे भाई ये राजा है, विश्वामित्र राजा है इस राष्ट्र के, बड़े राजा हैं, इन्हीं के रक्षा में संरक्षकत्व में हम रह रहे हैं और हमारा ये गुरुकुल इन्हीं के द्वारा सुरक्षित है, पूरे राष्ट्र इनके द्वारा सुरक्षित है, अतः ये राजा हैं, इसलिए राज उचित स्वागत सत्कार सम्मान इस आश्रम में होना चाहिए, तुम लोग तैयारी करो। ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज ये तो गुरुकुल है, यहां तो सब पर्ण कुटीर हैं, हैं? आप लोग रमन रेति तो गए हो, स्वामी गुरु शरण जी महाराज के आश्रम रमन रेति गए हो, जो वहां गया उसको मालूम है भाई, वहां जो आश्रम का अंतरंग विभाग है वहां सब पर्ण कुटीर है, संत लोग पर्ण कुटी में रहते हैं, छोटे छोटे फूस के झोपड़ी बनी हुई है, साधु सब अपने अपने झोपड़ी में रहते हैं, भोजन के समय में बाहर एक साथ निकलते हैं, भोजन करते हैं, घूमते हैं, फिर अपने अपने झोपड़ी में रहते हैं पर्ण कुटीर। लेकिन बंबई से जाने वालों के लिए बढ़िया फ्लैट भी बना दिया है, बात समझ गया ना, आश्रम परिसर के पास में बढ़िया गौशाला और बढ़िया फ्लैट, लग्जरी है फ्लैट, लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट सब है। अब बंबई वालों को वो झोपड़ी में है, हमारे झुंझुन वाले कह रहे हैं भाई जन्माष्टमी में आओ, वहां बढ़िया फ्लैट है, सब एयर कंडीशन है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। अब ये यदि न कहे तो तुम लोग जाओगे वहां? वहां आओगे तो खाने को नहीं मिलेगा, सोने को नहीं मिलेगा, रहने की नहीं व्यवस्था होगी, कुछ नहीं होगा, खुले मैदान में जन्माष्टमी के वेले समय में तो कोई भी नहीं जाएगा। तो कृष्णानंद जी ने, आप लोग बंबई वाले जाते हो सब सुविधा, तो आपके अनुकूल वहां व्यवस्था है, और हमारे जैसे जो पकड़ जाएगा हमारे लिए पर्ण कुटी है, है जो जैसा। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई ये राजा है, कोई साधारण पकड़ नहीं है, इसका राजोचित स्वागत सत्कार होनी चाहिए। बटुकों ने कहा कि महाराज यहां तो सब पर्ण कुटी है, कैसे उसका राजोचित सत्कार करें? बोले अरे बेटा तुमको पता नहीं है, कामधेनु गाय है, तुम उनके पास जाओ और जो चाहो वो प्राप्त हो जाएगा, खाली वहां जाओ संकल्प कर लो प्राप्त हो जाएगा। एक राजा क्या क्या भोग कर सकता है, क्या क्या वस्तुओं उसको स्वागत के लिए चाहिए, वो सारी चीज, बढ़िया महल चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया वस्त्र पलंग चाहिए, यही ना चीज है उसके लिए। तो गए, सब तैयार हो गए, जब विश्वामित्र पहुंचे देखा उसी प्रकार का स्वागत सत्कार हो रहा है। विश्वामित्र ने कभी नहीं सोचा था कि ये वशिष्ठ के आश्रम में जाकर इस महल में ऐसे राजोचित स्वागत सत्कार मुझे मिलेगा। वो तो सन्यासी के आश्रम जाना है, पता नहीं रात को बैठने के लिए झोपड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, खाने के लिए भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो जाते हैं, इतने सब लोग हैं उसी तरह गुजारा करेंगे। परंतु तो उनको तो आश्चर्य लगा कि ये तो अपने राजमहल से भी बढ़िया है। रात को रह गए, दूसरे दिन सुबह जब वशिष्ठ जी से मिले, संवाद हुआ, आपका गुरुकुल कैसे चल रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा राजन आपकी कृपा से आपके संरक्षकत्व में गुरुकुल बढ़िया चल रहा है, बटुक पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अध्ययन चल रहा है, सब ठीक ठाक है, कोई असुविधा नहीं है। विश्वामित्र ने लगे हाथ कहा कि महाराज मुझे एक प्रश्न मेरे मन में है, मुझे एक आश्चर्य लग रहा है, मैं पूछूं? बोले पूछो भाई। ये सारा का सारा मेरे स्वागत के लिए जो महल खड़ा किया, आप एक पर्णकुटी में रहने वाले, ये महल कहां से? और इतना बड़ा महल आपके पास था तो फिर आप पर्णकुटी में क्यों रहते हो? तो बोले, राजन देखो, हम तो तपस्वी हैं, हम तो इसी में रहेंगे, लेकिन तुम राजा हो, इससे जो जैसा है, जैसे देवता वैसे पूजा, तब तुम इसी प्रकार के देवता हो, इसी प्रकार की पूजा हुई। लेकिन ये सारी वैभव आपको कहां से प्राप्त हुआ, आप ईमानदार से बता दीजिए हमको। तो उन्होंने कहा कि राजन, ये कामधेनु गाय है, देवताओं के द्वारा दी गई कामधेनु गाय है। इसकी विशेषता है कि इसके नीचे, इसके सान्निध्य में बैठकर जो संकल्प करो वो पूरा करती है, तो उसी के माध्यम से गुरुकुल भी चलता है, उसी के माध्यम से तुम्हारे स्वागत सत्कार की व्यवस्था भी हो चुकी है। जब इसका महत्व उनको बोध हुआ विश्वामित्र को, कहा कि वशिष्ठ जी, आप एक फक्कड़ सन्यासी के यहां ऐसे कामधेनु की क्या आवश्यकता है, यह तो हमारे जैसे राजाओं की आवश्यकता है। हम इसको ले जाते हैं और इस गाय के माध्यम से बस सारी संपदाओं को दुएंगे और संपदाएं दू पाएंगे तो राष्ट्र समृद्ध होगा। आपके यहां तो ये गाय ऐसे बैठी है, ये यूजलेस है, ये तो यूज करेंगे इसका, हम ले जाकर उपयोग करेंगे। अब उधर राजा है, राजा ने मांग लिया है तो नहीं तो कह नहीं सकते थे वशिष्ठ जी, और यदि दे देते हैं तो राजा उसका दुरुपयोग करेगा। क्या उपयोग करेगा, भोग में ही तो आसक्त हो जाएगा। और कोई वस्तु देकर आप उस वस्तु को दें और उस वस्तु के द्वारा कोई भोग में आसक्त हो जावे तो उसको क्या सदुपयोग कहा जाएगा, दुरुपयोग ही है। वशिष्ठ जी विचार करने लगे क्या करें, तो हम कह देते हैं कि ठीक है कामधेनु गाय तुम ले जाओ, जाती है तो ले जाओ। कामधेनु गाय जाती है तो ले जाओ का मतलब क्या होता है, गाय को तो लेके जाना पड़ता है, अपने आप थोड़ी जाएगी उसको। तो अपने सेनाओं को कहा कि जाओ गाय को खोलो और ले जाओ, राजधानी ले जाओ, राजमहल में। विश्वामित्र के सेवक गए, सेना गए, गाय को खोलने लगे तो गाय तो भड़क गई, ले जा ही नहीं सके। और जब जबरदस्त करने लगे, कोई पीटने लगे, कुछ करने लग गए, जबरदस्ती करने लग गए तो गाय से रहा नहीं गया। तब उन्होंने अपने शरीर को हिलाया तो वहां एक से एक कृत्य पैदा हुए और उन सब के द्वारा विश्वामित्र की सारी सेना का संहार हो गया। बोलो, विकास हुआ कि विनाश हुआ कामधेनु गाय से? सारी सेना का संहार हो गया। ये कैसे हुआ? तो बोले, गाय वो जाना नहीं चाहती है, तुम जबरदस्ती करते हो, इसलिए गाय ने भी ऐसा ही किया है, हमने कुछ नहीं किया है। वशिष्ठ जी ने कह दिया, अच्छा ऐसी बात है, तो एक गाय को तुमने कैसे प्राप्त किया? तो हम ब्रह्मर्षि हैं, इसलिए ब्रह्मर्षि को प्राप्त होगा ये, तो तुम ब्रह्मर्षि हो तो हम भी ब्रह्मर्षि हो जाएंगे, तो ये गाय हम ब्रह्मर्षि होकर ले जाएंगे। तपस्या शुरू हुई, लेकिन उनके अंदर तपस्या का घमंड जब तक बीज रहा तब तक वो ब्रह्मर्षि हो नहीं पाए। वशिष्ठ जी को कहा कि ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि कह दो, कोई भी नहीं, वशिष्ठ नहीं माने, उसके अंदर अहंकार का बीज है तो कैसे हम ब्रह्मर्षि कहें उसको? अहंकार का बीज समाप्त तो हो जाए तो ब्रह्मर्षि हम कह देंगे। तो प्रसंग रामायण आदि के प्रसंग है, विश्वामित्र को एक दिन गुस्सा आ गया, ये जब तक जिंदा रहेगा मुझे ब्रह्मर्षि कहेगा नहीं, सभी लोग मुझे ब्रह्मर्षि मानने को तैयार हैं, केवल ये मानता नहीं है, इसको काट कर मार डालेंगे तो फिर हम ब्रह्मर्षि हो ही जाएंगे। तो उनको मारने के लिए गए तो उसके अंदर पति पत्नी वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी अरुंधति, तो वार्ता करते हुए सुन रहे थे, उतने सोच रहे थे ना कि सो जाए तब उसके समय में उसको मारेंगे, हाथ में अस्त्र है, अंदर वार्ता सुन रहे हैं। अरुंधति ने कहा कि तुम उसको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते हो, बिना मतलब दुश्मनी हो रहा है। बोले, मैं कहने को तैयार हूं लेकिन उसके अंदर जो एक अहंकार का बीज है वो रोक रहा है। ब्रह्मर्षि और अहंकार ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, वो छूट जाए तो ब्रह्मर्षि मैं कल कहने को तैयार हूं, अभी कहने को तैयार हूं बाबा। जब विश्वामित्र ने यह सुना तब जाके, अरे ब्रह्मर्षि होने में तो मैं ही बाधक हूं, सब कुछ किया, अहंकार को नहीं त्यागा, इसलिए मैं ही बाधक हुआ हुआ हूं। बस तुरंत तो उखड़ कर फेंक दिया और जाकर उनके चरण में पड़ गए। तब तो विश्वामित्र ने बस अंदर जाते ही वशिष्ठ जी ने कहा आओ ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मर्षि हो गए। तो प्रतिबंधक क्या है, तो अपनी ही समस्या है। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च, जिस परमात्मा में ये सब ब्रह्मर्षि आदि वहीं अवस्थित हैं और देवता भी वहीं हैं, तमेवम ज्ञाता, उसी को इस तरह जब जानोगे तब मृत्यु पाशा छिन्नति, वो जानने वाले व्यक्ति ने अपने मृत्यु के पास को काट डालता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।